यहां से वहां और वहां से वहां भटकते हुए मन में भक्ति और ईश्वरीय प्रेम ऐसा प्रकट हुआ कि अब हमने सोचा अब हमें क्या करना है। दो मार्ग दिखने लगे, एक मार्ग ईश्वर की तरफ जाने वाला, एक संसार की तरफ जाने वाला, एक मार्ग संन्यास का मार्ग और दूसरा मार्ग पेशेंट्स की सेवा का मार्ग, पोस्ट ग्रेजुएशन करना और सेवा करना। क्या करें अब हम? पोस्ट ग्रेजुएशन करके सेवा करें, एमडी करें और सेवा करें, या सब कुछ छोड़कर संन्यास लेकर परमात्मा प्राप्ति करें? एक दिन हमने एक सत्संग सुना जिसमें उस महाराज ने कहा कि जीवन का लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति और जीवन का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति। हमने सोचा कि अब हम इस संसार में नहीं रह सकते और हमने निर्णय किया हमें संन्यास लेना है। कहां ले पर? हमने 50 संस्थाओं की लिस्ट बनाई, 50 इंस्टीट्यूशंस, जिसमें ब्रह्मा कुमारी सबसे लास्ट में रखा। महानुभाव पंथ कृष्ण भक्ति करते हैं, डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश स्वामी शिवानंद, योगादा सत्संग सोसाइटी रांची स्वामी योगानंद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथा अमृत किताब है जो कि हमने 4 बार पढ़ी थी तब, माता अमृतानंदमयी केरला अम्मा और बहुत सारे याद नहीं अभी तो कहां जाए। फिर हमने फाइनल किया कि हम रामकृष्ण मठ में जाएंगे और जब भी हम उस मठ में जाते थे और शाम का वो सत्संग और फिर से वो अशरीरी अवस्था, फिर से वो मृदंग, फिर से वो खुशबू और फिर से स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित वो गीत खंडन भवबंधन वंदितमाए, बंगाली गीत संध्या आरती और वो अशरीरीपन का अनुभव, लंबा लंबा समय अशरीरीपन का अनुभव, जैसे देह है ही नहीं, जैसे श्री रामकृष्ण जिसको ठाकुर कहते हैं उनकी जो अवस्था हो जाती थी भाव समाधि, वह भाव समाधि का अनुभव। हमने सोचा अब हमें संन्यास लेना है और रामकृष्ण मठ में लेना है। एक दिन हमने हमारे भाई को बताया कि मैं संन्यास ले रहा हूं तो एकदम डर गया वो, उसे तो पता ही नहीं क्योंकि हम तो मौन में थे 6 मास। वो तो अपना सुबह कॉलेज जाता था, शाम को आता था, फिर लाइब्रेरी जाता था। तो हमने कहा हम जा रहे और घर में नहीं बताएंगे, चुपचाप निकल जा रहे, क्योंकि हमने सत्संगों में सुना है कि चुपचाप संसार से निकल जाना चाहिए, जैसे सांप अपने बिल से निकलता है और मक्खन से बाल। फिर उसने कहा नहीं तुम घर में बताओ, तो हमने कहा ठीक है। हम घर पहुंचे और घर में बताया कि हम संन्यास ले रहे हैं तो क्या हुआ होगा? एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसका हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमने तो सोचा था घर की बात घर में ही रहेगी, हमने सोचा था किसी को पता ना चले, चुपचाप निकल जाए। 1 मास तो हम घर में ही जैसे कैद हो गए। हमको समझाने के लिए लगभग 150 रिश्तेदार हैं। तुझा है तुझ पाशी, कहां जा रहा है, जो करना है यही करो। हर दिन नए नए लोग, हर दिन नई नई विधि से समझाने के लिए लोग। हमारी माता जी ने गणपति को पानी में डुबो दिया, इतने समय से भक्ति कर रहे हैं उसका ये फल, संकट, 3-4 कुंडलियां निकाली गई, 2-3 सत्यनारायण की पूजा हुई, हाथ से आलेला घास छीन लिया। पहले बताना चाहिए था, एडमिशन नस्ती थी एमबीबीएस ला, आधे संगाला का जो था। हमने कहा मुझे भी कहां पता था, ये कोई उम्र नहीं है करने की, बुढ़ापे में करने पड़ती है। मैंने कहा संत ज्ञानेश्वर, तू क्या संत ज्ञानेश्वर है क्या? रोज नए लोग नए नए लोग नई नई विधि से, परंतु जितना विरोध उतना ही वैराग और तीव्र। हमारी बहन कहती थी तुम्हारा तमो प्रधान वैराग है और हमारा है सदो प्रधान वैराग। हमको समझाने के लिए एक सन्यासी आया, हमने कहा गृहस्थियों को बिल्कुल नहीं लाना हमारे सामने। अगर कोई सन्यासी कहे तो शायद हम सोच सकते हैं रुकना है कि नहीं रुकना है। कुछ दिनों के बाद एक सन्यासी भी लेके आए हमारे पिताजी, जो कि पहले रामकृष्ण मठ में था, फिर वहां से बाहर आया, अभी रामकृष्ण मठ के विरोध में है। ऐसे सन्यासी को ढूंढ कर लाए। उसने भी बहुत समझाया। हमारे जीवन में आया हुआ पहला और मुझे लगता है अंतिम क्रोध तब था। इतना विरोध कि एक दिन वो जो लोहे का होता है ना सब्बल, वो हमने ले लिया, अगर हमको किसी ने रोका तो मार दूंगा। ये जीवन में आया हुआ पहला और शायद अंतिम क्रोध। परंतु ये सब जब चल रहा था, इतना विरोध, परंतु हमारे अंदर एक विरह अग्नि थी, नको देवराया अंतहता पाहु प्राणा सर्वथा जाहु पाए। परंतु किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें अब हम। हमारे पिताजी कहते हैं सगळं ते पुस्तकांमुळे झालं, हमारी सारी किताबें उन्होंने जाकर छिपा दी। कहां छिपाई अभी तक भी नहीं पता, घर में तो नहीं है, सारी किताबें छिपा दी हर तरह से, कहीं यहां लेके जा रहे कर एक जगह, फिर कभी यहां से कोई रिश्तेदार वहां आते थे अपनी गाड़ी लेकर हमको बिठा के किसी के पास लेके जाते थे। फिर ज्योतिष चाहे उसने कहा यह तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा और विदेश में जाएगा, संन्यास इसके भाग्य में ही लिखा नहीं है। पर हम नहीं रुके। हमारे पिताजी ने एक लेटर लिखा था टू अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड बाय रामकृष्ण मठ एंड मिशन। 6 पेज का एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा था कि रामकृष्ण मठ सम्मोहित कर दिया है। हम एक दिन अपने पिताजी को जबरदस्ती रामकृष्ण मठ अमरावती लेके गए उनको दिखाने के लिए, देखो तो क्या है, और उनको बहुत समझाया पर वो नहीं मानते थे। फिर कभी कभी कह भी देते हाँ अच्छा ठीक है हम ही खुद तुमको छोड़ के आ जाएंगे, फिर दूसरे दिन फिर बदल जाते थे। तब तक हमारे एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया, पीजी एंट्रेंस एग्जाम का। उसमें हमें एडमिशन मिल रही थी मेडिसिन, एमडी के लिए एडमिशन मिल रही थी, हमने वो गवर्नमेंट की सीट को छोड़ दिया। और हमारा ही एक भाई दूर का रिश्तेदार ऐसी ही पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट डोनेशन पे 30 लाख रुपए लेकर ले रहे थे। आपल्या घरी फ्री मध्ये भेटता है ते हा सोडतोय, तिकडे डोनेशन, उसका और ज्यादा दुख। शायद जो रिश्तेदार थे उन्हें थोड़ी खुशी भी हो रही थी, थोड़े जलते होंगे पहले से, ऐसा होना चाहिए। तो फिर हमारे पिताजी को हम जबरदस्ती नागपुर लेके आए, नहीं माने। जबरदस्ती नागपुर से हम अपने पिताजी को फिर लेके गए पूना रामकृष्ण मठ, एक रात वहां रुके। हमारे पिताजी ने वहां से कुछ भी नहीं खाया, ये लोग कुछ कर देंगे। वहां से हम अपने पिताजी को मुंबई लेके गए रामकृष्ण मठ खार वेस्ट, और वहां फिर हमारा झगड़ा हो गया। हमने कहा हम यहां से जाएंगे नहीं, आपको जाना है तो जाओ। तो हमारे पिताजी ने फिर यहां एक साम दाम दंड भेद, एक अंतिम शस्त्र चलाया। हमारे पिताजी ने कहा कि इसके नाम पर बैंक का लोन है, वो कौन देगा। एमबीबीएस के लिए लोन लिया था, हमको इतने बहुत बड़े परिवार नहीं थे कि 3 लोग एक ही परिवार से डॉक्टर अलग अलग जगह पर, किताबों का खर्च सब कुछ खर्चा, लोन लिया था, वो कौन देगा। तब हम चुप हो गए, फिर हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वहां पर एक व्यक्ति थे वामन महाराज, उन्होंने कहा कि तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो, अगर तुम्हारा वैराग सत्य है, सही है, सच्चा है, वो जाएगा नहीं, दिस इज एन एसिड टेस्ट ऑफ वैराग। तो हमने कहा, उन्होंने कहा इनके पैसे दे दो और फिर आओ। तो हमारे हमने कहा फिर यहां हम थोड़े शांत हुए। अब तक तो नाम ही नहीं था शांत होने का, थोड़ा सा यहां शांत हुए। और फिर हमारे पिताजी ने तुरंत मेडिकल ऑफिसरशिप की ऑर्डर निकाली हमारी, और हम वर्धा, आरवी, वर्धा में आरवी शहर है, संतों की नगरी, लहनुजी महाराज वहां पर एक पंडरी पांडुरंग महाराज, लहनुजी महाराज। तो हम आरवी आए, वर्धा डिस्ट्रिक्ट। 6 मास तक यहां मेडिकल ऑफिसर थे, जो भी हमको सैलरी मिलती थी सब हम बैंक में डालते गए। 6 मास में सैलरी चुकतु हो गई। बीच में हमारे मम्मी और पिताजी दोनों ही आरवी में हमसे एक बार मिलने आए। जिस रिक्शा में वो आए और हम जब आरवी गए तो 6 मास वहां पे हम बहुत प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि वही सेवा का भाव फिर से जागृत हो गया। और सुबह से लेकर रात तक पेशेंट 300-300 की ओपीडी रहती थी, तो दूर दूर से लोग आने लगे, नए डॉक्टर को दिखाना है, नए डॉक्टर को दिखाना है, और सब लोग आते थे और वो पता नहीं ठीक होते थे और चले जाते थे। फिर हमको एकदम तुरंत स्ट्राइक हुआ कि ये जो प्रसिद्धि है और ये जो नाम है, ये बाधा है सबसे बड़ी अध्यात्म के मार्ग में, ये बाधा है, हमको इससे मुक्त होना है। एक बार तो ऐसा हुआ, हमारे पिताजी और माताजी जब हमें मिलने आए तो जिस रिक्शा में आए, वो जो रिक्शा वाला था, वो कह रहा था एक नया डॉक्टर आया है जिसने मुझे ठीक कर दिया, इतने सालों से मैं ठीक नहीं हुआ। और जब आया रिक्शा हॉस्पिटल के सामने, कहा यही वो डॉक्टर है, इनका दुख और बढ़ गया। फिर हमने फिर से रेजिग्नेशन लेटर दिया कि हो गया, हमारा लोन चुकतु हो गया। परंतु हमारा रेजिग्नेशन लेटर स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि हमारे पिताजी पहले ही सब जगह जाके आ गए ऑफिस में कि लेना नहीं, धोखा कर रहा है मेडिकल प्रोफेशन के साथ। और हम चाहते थे उस गांव जो था आरवी, वहां से चुपचाप निकल जाए, पर वो बात पूरे हॉस्पिटल में पता चल गई, सारे गांव में पता चल गई। जो भी मिलता था, डॉक्टर साहब नका जाऊ ना, मैंने कहता था इनको किसने बताया, वो बहुत कौन रहा था इस बात में, इनको बताया किसने। तो जो भी मिलता था वो यही कहता था, मेहर बाबा, वहां पर मेहर बाबा का केंद्र था एक, उसका अध्ययन हमने वहां ब्रह्मा कुमारी का केंद्र था, सीमा दीदी। किसी एक भाई को लगा शायद हम भी बीके हैं, तो उसने कुछ मुरलियां अध्ययन के लिए हमको दे दी, तो हम वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ एक हाथ पैराग्राफ पढ़ते थे और देखते थे, बाकी इसमें भी तो वही है, सत्यता, इसमें भी सत्यता, इसमें भी दिव्य गुण, उसमें भी दिव्य गुण, क्योंकि हमारे पास कोई एक चीज नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी, और हमारा विरोध नहीं था, समन्वय, हार्मनी ऑफ ऑल द रिलीजन्स, विरोध नहीं, कट्टरवादी नहीं कहना है, बनना है। जैसे हमारी बहन कहती थी ये ही है, हम कहते थे सब है, वो कहते थे हेता है तो। लोन चुकतु हुआ, हम वापस घर आए। अब हमको यह निर्णय करना था कि रामकृष्ण मठ के भी इतनी सारी ब्रांचेस हैं, हम कहां जाएं। हम एक डॉक्टर को मिले नागपुर में, वो रहते हैं, उनका नाम हम भूल गए, अभी भी रामकृष्ण मठ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भी संन्यास लेना था पर मैं नहीं ले पाया, तुम जरूर लेना, वो एक ही होशियार आदमी या फिर हमारा रहम दिल सहानुभूति वाला एक ही व्यक्ति पहला हमको मिला कि जिसने कहा तू जो कर रहा है वो राइट है। अब तक जितने लोग मिले सब शिक्षाएं देते थे, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण, इसका क्या। कई लोग हमको समझाने आए, पर हमारे पास क्योंकि हमने बहुत सारे शास्त्र का अध्ययन किया था, अभी तो कुछ याद नहीं है, पर तब हमको पता था। एक बार तो एक क्रिश्चियन आए, उसको हमने उसी का सुनाया, जीसस क्राइस्ट ने एक जगह कहा है, ही हू लवेत हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, जो अपने लौकिक माँ बाप को मेरे से अधिक प्रेम करता है वो मेरे लायक ही नहीं है। ही दैट लवेत हिज डॉटर एंड सन मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, जो अपनी लौकिक बेटी को और अपने लौकिक बेटे को मेरे से अधिक प्रेम करता है वो मेरे लायक नहीं है। वो चुप ही हो गया, फिर वो चला गया, उसने कुछ कहा नहीं। फिर घर में आए और अब फाइनल हो गया, तो तो उस डॉक्टर ने हमको कहा तुम साउथ में जाओ, नेट्रमपल्ली वेल्लोर के पास है। तो हमने कहा हम वहीं जाएंगे, बहुत छोटा सा गांव है, वहां तुम संन्यास लेना, वहां हॉस्पिटल भी है, उनकी डिस्पेंसरी है, वहां सेवा भी करना और ये भी करना। हम घर आए, घर में बहुत सारा वो रोना धोना तो चालू ही था। फिर हमने फाइनल किया अब हम जा रहे हैं। हाँ, हमारी बहन हमको एक माता जी के पास लेके गए, वो माता जी का नाम जो गीता पाठशाला चलाते हैं अमरावती में, नहीं वो जो दूसरी माता है जिनकी कन्या पहले ज्ञान में थे, राजेश्वरी की माता जी, हाँ तो उस माता के घर लेके गए। तो उस माता ने हमको बहुत दृष्टि दी 15 मिनट, हमने भी बहुत दृष्टि दी उसको। अहम ब्रह्मास्मि सर्व खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। ऐसी पावरफुल दृष्टि उसको दी, हमको लगा कोई ये हिप्नोटाइज ना कर दे हमको। तो फिर हम जाने को तैयार हो गए। हमारी माता जी ने फिर अभी कहा कि जर तू गेलास, सामने जो कुआ है उसमें कूद जाऊंगी। मैंने कहा कूद जा, हमको पता था इतना मां है कुछ नहीं करने वाली। इधर क्रिकेट मैच भी चालू है और इसमें बीच में ये रोना भी चालू है, वो भारत पाकिस्तान कुछ फाइनल मैच थी वो भी देखना है, ये तो कुछ नहीं करने वाले। हम वहां से निकले, कॉमन बुगी में बैठे। और एक बात, जब हम वर्धा आरवी में थे, इतना सब करने के बाद हमें पता चला जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। तो हमने एक पत्र लिखा स्वामी रंगनाथानंद, रामकृष्ण मठ के जो इंचार्ज थे बेलूर मठ हावड़ा, स्वामी शिवानंद के डायरेक्ट शिष्य, स्वामी शिवानंद स्वामी विवेकानंद के गुरु साथी। तो हम उनको मिलने कॉमन बुगी में चुपचाप गए, हमको 50 घंटे लगे थे उस जर्नी में पहुंचने के लिए। वहां हमारी मंत्र दीक्षा हुई बेलूर मठ हावड़ा, और फिर हम वैसे ही चुपचाप वापस आए। तो ये, और फिर उसके बाद में तो गुरु के प्राप्ति के बाद और मंत्र दीक्षा के बाद हमारी साधना बहुत ज्यादा तीव्र थी, बाल भी हमने कटा लिए थे। हम साउथ पहुंचे, चेन्नई, चेन्नई से वेल्लोर, वेल्लोर से वो गांव ढूंढते ढूंढते कितने घंटे लगे वहां, ना तो किसी को हिंदी समझ में आती थी ना तो इंग्लिश, वो गांव में तो बस वो उधर की भाषा चलू थी तमिल। वहां हम 4 दिन रहे उस मठ में, वहां के बहुत सारे सन्यासी थे, उनके साथ हमने ज्ञान की चर्चा की। पर हमने उनको जो भी प्रश्न पूछे, उन्होंने कहा ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ने वाले हैं। हमने कहा इनसे चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। वहां से हमको वो लेके गए, एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, पहाड़ी पर एक आश्रम था जिसमें एक ही व्यक्ति रहता था सन्यासी, उसको मिलने गए हम। और उसको हमने कहा कि हमारे पिताजी कहते हैं कि हमारी कुंडली में तो सन्यासी नहीं लिखा है। तो उस सन्यासी ने पूछा हमसे कि क्या लिखा है फिर कुंडली में। हमने कहा कुंडली में लिखा है ये सत्यवादी होगा और मोक्ष पद की प्राप्ति कहेगा। तो कहा, उसने कहा बस केवल सन्यासी ही मोक्ष पद पा सकता है, बता दो अपने पिताजी को जाकर। और उसने हमसे कहा तुम यहां मत ज्वाइन करो, तुम चेन्नई जाओ, मायलापोर रामकृष्ण मठ बड़ा है, जो जैसे हमारा शांतिवन है वैसा ही वो है, वहां ज्वाइन करो। हम वहां गए, वहां हम 7 दिन रहे। हमारे पिताजी का फिर से फोन आया कि जो नौकरी तुमने 6 मास में छोड़ दी है वो गवर्नमेंट का बॉन्ड है, नहीं तो 2 लाख रुपए भरो फिर जाना। हमने कहा आप क्या करें। हमने स्वामी गौतमानंद से कहा वहां पर, जो इंचार्ज थे कंप्लीट तमिलनाडु के, कि ऐसी समस्या है। उन्होंने कहा जब कोई मिलिट्री में होता है उनका भी बॉन्ड होता है, वैराग उत्पन्न होता है तो वो भी संन्यास लेते हैं, वो थोड़ी रुकते हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है, पर फिर भी हम एक बार जाके आ रहे। हमने अपनी बैग वहीं रखी और कहा कि हम वापस आ रहे। हाँ, उस पीरियड में एक और सन्यासी हमारे साथ हमारे कमरे में रुका था, जो भी हमारे जैसे ही संन्यास लेने आया था। 4 दिन के बाद उसके माँ बाप आ गए, पर उसमें बहुत वैराग था। हमने देखा उसके माँ बाप आ गए और उन्होंने कहा हमारा बेटा जो है ना उसको किसी लड़की से शादी करनी थी, हमने मना कर दिया, इसके लिए वो संन्यास लेने आया है, अभी हम मान गए उनको दे दो हमारा बेटा वापस। तो हम डर गए कि कहीं ये लोग ये ना सोचे कि हम भी ऐसे ही कुछ। यहां पहुंच गए तो हम वापस आए अमरावती, हमारा एक मित्र था जो वकील था, उससे हमने पूछा क्या करना चाहिए ये बॉन्ड का। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आजकल कौन जाता है गांव में सेवा करने। हमारे तो मन में यह भी इच्छा थी कि हम भी अभय बंग और रानी बंग के पास जाए और सेवा के, ये एक संकल्प हमारा ये भी था, गढ़चिरौली में जाए और उनके जैसी हम भी सेवा करें। कभी तो ये संकल्प था, कभी संकल्प था कि बहुत पढ़ाई की जाए जैसे श्रीकांत जिचकार हम भी वैसी ही पढ़ाई करें। परंतु ये सारे संकल्प जब वैराग और संन्यास के संकल्प आए सब विलीन हो गए थे, फिर हमें को कुछ इच्छा नहीं थी ये सब करने की। तो नवंबर मास 2003 लगभग 20 तारीख हमारा फाइनल हो गया कि हमें रामकृष्ण मठ चेन्नई में ज्वाइन करना है। परंतु हाँ एक और चीज करनी थी हमको, और एक जगह जाना था, सत्य साई बाबा पुट्टापर्ती, पहले वहां जाएंगे फिर चेन्नई, वो एक चीज रह गई थी जाना। हमारी बहन ने कहा कि तुम जाते जाते माउंट अबू थ्रू जाओ। हमने कहा ठीक है, पर हमको ये तो पता था कि नियम बहुत कड़े हैं, कायदे बहुत कड़े हैं वहां जाने के। हमने कहा हम तो बाहर का सब कुछ खाते हैं, श्री कृष्णार्पणम मस्तु। हमको याद है एक बार हम एक सत्संग में थे, भागवत चल रहा था, हम वहां पे जैसे चक्कर आके गिर गए थे नीचे। परमात्मा प्रेम आवेग था वो। एक और समय याद है, 3 मास 3 दिन हम एक दूसरे भाव में स्थित थे, मीरा जैसी भक्ति, ये भूल ही गए थे कि हम पुरुष है, मीरा जैसे गुलाब महाराज, ज्ञानेश्वर कन्या जिन्होंने कृष्ण को अपना पति माना था। 3 दिन और 3 रात हम उस एक भाव में स्थित थे मीरा के। तो हमने कहा ठीक है, पर हम जाए कैसे। उसने कहा, हमने कहा हम तुम्हारा कुछ भी फॉलो नहीं करते, ना तो मुरली में जाते हैं तुम्हारी और ना ही बाहर का खाते भी है। उसने कहा तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा वैराग तो हमारे सेंटर में भी किसमें भी नहीं है। वो अपनी, क्योंकि उसको अपनी जगह लेके जाना था ना, तो थोड़ी स्तुति तो करेगी। हमने कहा ठीक है, पर उसने कहा एक बात करनी पड़ेगी, जब तुमसे पूछा जाए कब से ज्ञान में हो तो बोलना 1 साल से। हमने कहा ये हम नहीं करेंगे, हमारा तो बीज ही डाली है वहां वो महात्मा गांधी और सत्य के प्रयोग से। और जब हम उसके बहुत विरोध में थे, वो जब भी किसी के घर जाती थी कहती थी खाना खाओ, तो कहती थी पेट में दर्द है, झूठ। और वो कहती थी युक्तियुक्त, ये तथा कथित सो कौन युक्तियुक्त हमारा नहीं था, इसको हम झूठ कहते थे। वो कहती थी अभी भी खाना खा के आए घर से, जबकि नहीं आए। हमने कहा ये हम नहीं करेंगे। उसने कहा नहीं करना, तो हमने कहा ठीक है चलो मान लेते हैं। 23 या 24 तारीख हम पहुंचे हमारी बहन के साथ वसंत नगर सेंटर, पुष्पा रानी दीदी जी सामने बैठे थे ऊपर, वो जो सिटिंग रूम है फर्स्ट फ्लोर, और भी बहने थी शायद, रजनी दीदी थे या नहीं क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे, हमें याद नहीं तब। तो हम बैठे, हमारे चेहरे पर एक गंभीर भाव था, हंसना तो हम विस्मृत हो चुका था, वैराग का भाव था, इस संसार से वैराग था, सब कुछ समाप्त हो गया था संसार। तो हमारी बहन ने कहा ये हमारा भाई है। दीदी ने पूछा कौन से सेंटर जाते हो, कब से ज्ञान में हो। हम चुप रहे, फिर कहा 1 साल। दीदी ने कहा कौन सा सेंटर, हमने कहा आप कौन सा सेंटर बताएं। हमने कहा अमरावती। दीदी ने फोन लगाया, सीता दीदी। सीता दीदी ने कहा नीलम तो आती है, उसका भाई को कभी देखा नहीं। तो दीदी हमारे तरफ देखने लगे, हम दीदी की तरफ देखने लगे। तो हमने कहा हम आरवी में जाते, वो जो सेंटर है ना आरवी, जहां हम मेडिकल ऑफिसर थे, हमने कहा वहां का फोन बंद है। वो फोन शायद चार्ज नहीं था, वास्तव में बंद था उस समय। तो दीदी ने कहा ठीक है, पर दीदी ने कहा हम लोग का तो रिजर्वेशन सबका हो गया, पार्टी कल निकल रही है, आप कैसे जाओगे। हमने मन ही मन कहा सारा भारत का चक्कर तो हमने कॉमन बोगी में बैठ के बिताया गुजारा है, न्यूज़पेपर पे बैठ सो के ट्रेन में सारा भारत का सफर किया है, हमको किसी रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। उनको नहीं कहा, मन ही मन कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। हमने कहा ठीक है। दूसरे दिन बाबा 30 तारीख को आ रहे थे, 30 नवंबर 2003। हम सुबह दूसरे दिन हमारी बहन और हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, और रेलवे स्टेशन में वो सारी पार्टी थी, एक बहन थी साथ में, कौन सी बहन है हमें पता नहीं, शायद यहां है वो बहन, कौन था हमें नहीं पता। एक बहन थी, उसको खाली इतना पता था एक डॉक्टर पीछे है बैठा हुआ, इतना ही उसके पास उसको पता था, दीदी ने उसको कहा था। कोई तो एक बहन थी, हमको पता नहीं कि ये बहन है। तो हम बैठे कॉमन बोगी में, सारी पार्टी बैठी रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में, और हम निकल पड़े भगवान से मिलने। हमारा प्लान था माउंट अबू, माउंट अबू से पुट्टपर्ती और पुट्टपर्ती से चेन्नई फाइनल। ट्रेन निकल पड़ी, हम संकल्प कर रहे थे अभी हमारा भागवत का 7वां अध्याय बाकी है, अभी हमारा ब्रह्म सूत्र पढ़ना बाकी है, अभी हमारा ज्ञानेश्वरी का 8वां अध्याय ठीक से पढ़ा नहीं है, अभी श्रीधर स्वामी की वो टीका टिप्पणी हमने पढ़ी नहीं है। ये संकल्प करते करते और एक अद्भुत बात, उसी बुगी में दो माताएं सामने बैठी थी, जगह नहीं थी इतना कॉमन बुगी, वो दो माताएं ज्ञान की चर्चा कर रही थी, उनकी चर्चा चालू थी, ऐसे बात कर रही थी, हां उस आत्मा का कल्याण हो जाना चाहिए, ये जो भाषा थी ये हमने कभी सुनी नहीं थी ऐसी भाषा, आत्मा ये उनके बोल से लग रहा था वो अनपढ़ है, पर बातें आत्मा की कर रही थी। फिर कह रही थी मेरे मन में संकल्प आ रहा है, ये किस तरह की हिंदी है हमने कभी सुनी नहीं, संकल्प आ रहा है मन में, एकदम हायर लेवल की हिंदी है, पर उनकी बाकी बातें सुनकर नहीं लगता था कि ये पढ़ी लिखी है, पर बातें कह रही करती आत्मा में बातें, आत्मा शब्द आ रहा था बार बार, किस आत्मा का हो जाए, ये आत्मा आने वाली है, वो आत्मा ऐसी है। हमको हम सोच रहे थे इन्हें क्या पता होगा अद्वैत वेदांत के बारे में, विशिष्ट वेदांत के बारे में, क्या इन्होंने ब्रह्मसूत्र पढ़ा होगा जो ऐसी बातें कर रही है। तो संकल्प करते 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 हम पहुंचे शांतिवन गेट नंबर 2, शायद 27 तारीख थी, 27 हाँ, गेट नंबर 2, बस उतरी, हम नीचे उतरे और हमें लगा ये स्थान हमने देखा है, ये स्थान हमने देखा है, कब देखा है पता नहीं पर देखा है। हम गए पर हमारे मन में संकल्प दृढ़ था, यह भी सोच के आए थे शायद ये लोग अपना प्रभाव हम पर डालेंगे, हम अपना निर्णय नहीं बदलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 8 मास ये संघर्ष था हमारा। रात में हमें वो कमरा दिया गया, 5 लोग जिसमें थे, हम रात में सोए। रात्रि में हमने एक स्वप्न देखा जिसमें हमने लक्ष्मी नारायण का वो चित्र देखा जो हिस्ट्री हॉल में है, परंतु वैसा नहीं, बहुत ही जीवंत लाइव। हम सुबह उठे और फिर स्नान वगैरह किया, तब तक तो कमरे में कोई नहीं था, सब चले गए थे मुरली के लिए। फिर हमने अपनी साधना आरंभ की, राम रक्षा, हनुमान चालीसा और मंत्र जाप, और हमने देखा हमको वो याद ही नहीं आ रहा है। हमने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, किताब निकाली और देखकर हमने पढ़ा ये कुछ तो हो रहा है, कुछ यहां पर हो रहा है, कोई जैसे कुछ कर रहा है। क्या मंत्र है? राम रक्षा पढ़ रहे और फिर भूल रहे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे और भूल रहे। दिन भर हम भटकते रहे, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। कहां जाए? वो पार्टी कहां चली गई, वो बहन कहां चली गई, पता ही नहीं चला। वो कहीं हमको पता नहीं। भटकते भटकते शाम हुई और अचानक एक गीत बजा और हमने देखा सब लोग स्थिर हो गए। शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। हमको लगा ये गीत हमने हजारों बार सुना है, कब सुना है, कहां सुना है नहीं पता, पर हजारों बार ये गीत हमने सुना है। और हमको लगा ये सब क्या हो गया सबको, ये सब एकदम स्थिर कैसे हो गए, क्या ये वही ठाकुर को जैसी भाव समाधि होती थी वह अवस्था है? नवंबर 2003 बाबा शाम को आने वाले थे। सुबह अनाउंसमेंट हुई कि 3 बजे गेट खुलेंगे। हमारी बहन ने तो हमको कहा था मुरली चलेगी, हिंदी में चलेगी, क्या होगा वो सब हमको पता नहीं। हम 3 बजे जाकर वहां बैठ गए। तीन बजे से बैठे, रात को 11 बजे तक। अश्रुधारा बहने लगी, जिन जिन को हमने पढ़ा था वो सब हमको जैसे दिखने लगे स्टेज पर। तुलसीदास, मीरा, संत ज्ञानेश्वर, उस हॉल में कोई भी नहीं था, हम ही थे बस। क्या मुरली चली हमको पता नहीं, कौन आया हमको पता नहीं। हमने देखा केवल एक प्रकाश, एक दिव्य प्रकाश सामने है और हम रो रहे हैं। वो चल रहा था हिंदी में पर हमने हिंदी नहीं सुनी। गीता के जैसे श्लोक वहां से आ रहे थे, मया सर्वमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषु अवस्थितः। और एक ही चीज हमने सुनी कि सामने से जो आवाज आ रही थी वो एक ही आवाज थी कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। और हम मौन, निस्तब्ध, निशब्द बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। तुलसीदास ने लिखा है,
जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया,
सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया,
ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया।
जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया,
भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा, जैसे लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिला रहा हो किनारा, मिला रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरा, सूरज की गर्मी
पावा परम विश्रामा। तुलसीदास ने रामचरितमानस पूरा किया और लिखा है, पावा परम विश्रामा। हम बैठे रहे, बाबा आए और चले गए, सब हॉल लगभग खाली हो गया, कुर्सी उठाने वाले आए, हमको कहा कि पूरा हो गया है, उठो। हम उठे और बहुत समय के बाद हम पहली बार सोए। दूसरे दिन जब उठे तब अब हमारी कोई इच्छा नहीं थी अब कहीं जाने की। बहनों ने कहा साइट सीइंग के लिए चलो, तो साइट सीइंग के लिए ले गए, यहां घुमाया वहां घुमाया और हॉस्पिटल के सामने आए और कहा यह हमारा हॉस्पिटल है। तब हमको याद आया कि मैं डॉक्टर हूं। हम तुरंत गए अंदर और ढूंढा कौन है इसका इंचार्ज, और सीधा डॉक्टर प्रताप के केबिन में गए और उनको कहा कि हमको अभी इसी वक्त यहां ज्वाइन करना है, राइट नाउ। उन्होंने कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो? हमने कहा हम नागपुर से आए हैं। उन्होंने कहा लेटर लेके आओ। हम कहां से लाए लेटर और किसका लाए लेटर। फिर भी हम नीचे आए और फिर वहां पर दिल्ली में कुछ प्रोग्राम था। हमारा ये भाग्य है कि उस ग्रुप में केवल हम ही एक कुमार थे और दीदी हमें ही लेकर घूम रहे थे सब जगह, कहीं यहां ले जा रहे कभी वहां ले जा रहे, कभी उनको लगा मैं बहुत पुराना हूं और हमको भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम नए हैं। हमारा एक ही दिन हुआ था जन्म का, पर हमको लगा हम बचपन से हैं। और दीदी का हम पर ऐसा विश्वास हो गया एक ही दिन में कि यह आश्चर्य है कि उन्होंने कैसे हमको पहचाना। और हमने कुछ बोला भी नहीं उनसे, उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम है, मैं जा रही हूं, आप सभी ग्रुप को वापस ले जाओ। 60 का ग्रुप था, सारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे उसमें, और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी फर्स्ट डे कि आप इस ग्रुप को वापस ले जाओ। तो उस ग्रुप को हम वापस लेकर आए, उनके इतने बड़े बड़े सामान इधर से उठाना उधर डालना, उधर से उठाना उधर डालना, हम अहमदाबाद में चेंज करना। हम घर आए, हमने पहली बार श्वेत वस्त्र धारण किए सामने से खरीद कर, और पहली बार बैच पहना, तब जो व्हाइट पहना वो अब तक, उसके बाद कभी भी कोई और रंग का वस्त्र पहनने की इच्छा नहीं हुई। हम घर पहुंचे और घर बताया संन्यास कैंसल। तो गणपति पानी से बाहर निकला और अपने सब खुश हो गए। भगवान ने सुन ली, पर हमने कहा हम ग्लोबल हॉस्पिटल जा रहे हैं। उन्होंने कहा जात चालते ते भगव्या वस्त्र मध्य भगू नहीं शकत फक्त, कम से कम डॉक्टर तो रहिल। तो 15 दिन के बाद हमने हॉस्पिटल ज्वाइन किया और वो ज्वाइन करने के बाद भी इतना नशा, किसको बताए ये नशा, किसको बताए। एक बार किसी भाई ने पूछ लिया कब से ज्ञान में, हमने कहा था युक्ति तो बताना चाहिए, 1 मास। उसने कहा 1 मास में यहां पहुंच गए, तो फिर हमको डर लगा। अगली बार किसी ने पूछा कब से ज्ञान में, हमने कहा 6 मास। उसने कहा 6 मास में मधुबन पहुंच गए, फिर अगली बार हमने कहा 1 साल। हमको तो यही नहीं पता चला। फिर हम और एक बात, प्रेम भाई, हाँ, जब नेक्स्ट टाइम जब हम वापस ज्वाइन करने निकले तो हम शांतिवन से तो ऊपर चढ़ रहे थे, एक छोटी गाड़ी थी जा रही थी, तो हमने कहा हम भी बैठ जाएंगे, शायद प्रेम भाई को याद नहीं ये बातें। तो हम ज्वाइन करने जा रहे थे, हमारे पास एक पॉलिथीन थी, उसमें एक कपड़े थे बस, और एक चप्पल थी पहनी, वो भी टूटी हुई। तो प्रेम भाई जी ने पूछा कहां जा रहे हो, हमने कहा ऊपर ग्लोबल हॉस्पिटल। उन्होंने कहा रहोगे, कहा अब रहोगे, वो कहा वो तो हमको भी नहीं पता, हमने कहा पता नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा सामान, हमने कहा बस यही है, ठीक है, कुछ बोला नहीं। वो तो अपने मौन बैठे थे, एक दो प्रश्न पूछे और वो, पर हमको याद है वही हमारे साथ थे। तो हम जब ग्लोबल हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर प्रताप ने कहा कि आपका सामान, तो हमने कहा सामान तो नहीं है, कुर्ता है। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर को फोन किया, एक डॉक्टर आया है, उसके पास कपड़े भी नहीं है, पहले उसको कपड़े दो ज्वाइन करने के लिए। हम 6.5 साल मधुबन में रहे, 1.5 साल, और ये हमको फायदा मिल गया डॉक्टर होने का, जैसे दीदी को फायदा मिल गया था मधुबन रहने का। याद है कौन सी बात, भाषा। दादी दीदी ने गोपी दादी थी करनाल में, गोपी दादी से सिंधी पढ़ना सीखा, क्योंकि 14 वर्ष की उम्र में दीदी को सबसे पहला बाबा का लिखा हुआ खत आया था। उसके बाद में दीदी में इच्छा थी कि मैं बाबा को उसी भाषा में समझूं जिस भाषा में वो लिखा गया है। गोपी दादी से दीदी ने सिंधी सीखी, विश्व रतन बाबा से दीदी ने टाइपिंग सीखी हिंदी। इन दो कारणों से दीदी, जो मनमोहिनी दीदी के साथ केवल 1 हफ्ते के लिए मधुबन गए थे, परंतु रहे कितना समय, 1.5 साल। तो दीदी ने अपने अनुभव में यह सुनाया है कभी, तो हमको भी फायदा मिल गया वैसा ही डॉक्टर होने का। वो तो जैसे खंभा था जिसको पकड़ गए हम मधुबन में रुकने के लिए। 1.5 साल हम वहां रुके और वो 1.5 साल में पुरुषार्थ ऐसा था, वो ऐसा कि हमको तो कुछ भी नहीं पता था। सबसे पहला दिन हम सामने जाके बैठ गए ओम शांति भवन में, प्रकाशमणि दादी साकार मुरली सुनाने के लिए, पहला महावाक्य, मीठे बच्चे अब तक जो पढ़ा है उसे भूल जाओ। तो हमने पीछे देखा, मुझे कहा ये कोई और है। तो वो पहला महावाक्य दादी का। उसके बाद रामनाथ भाई एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, उसी दिन पहला जो दिन था उनको कुछ सांस लेने में तकलीफ हुई, दादी जानकी उनसे मिलने आए और प्रताप सर ने दादी जानकी से कहा ये हमारे नए डॉक्टर है। दादी जानकी ने हमें देखा और कहा ये है सच्चा राज ऋषि। तो मदची मीत व्यालो आपुली अपोटियालो, जन्म ही हमारा मधुबन में हुआ और दादी का वरदान मिला। और वो जो पुरुषार्थ था, जब हमको पता चला लोग 3:30 बजे जाते तो हम 3:30 बजे जाने लगे, जब पता चला कोई कोई तो 2 बजे पहुंचते हैं तो हम 1:30 बजे उठने लगे और 2 बजे टच होते थे कुटिया में। 1.5 साल वो पुरुषार्थ चला। और तो बहुत सारी बातें हैं, अभी समय हो रहा है। फिर सभी ने कहा तुम फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन करो, एक बार तो छोड़ दिया था, ये अनुभव हमने तभी किसी को नहीं सुनाया वहां पर। उन्होंने कहा तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करो, तो हम फिर वापस एंट्रेंस एग्जाम दी, वापस हमारा सिलेक्शन हुआ, वापस हम मिरज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सांगली में गए। वहां हम कुछ समय रहे, 2005 में वहां से निकले, कुछ समय मिरज में रहे, फिर वहां से हमारा जो हॉस्पिटल है बीएसएस हॉस्पिटल मुंबई, वहां हम 3 साल थे, 3.5 साल डॉक्टर अशोक मेहता के साथ। हमारा अब लक्ष्य था, क्योंकि निर्वेद भाई जी ने कहा था कि तुम सब कुछ सीख के आओ, हमारा लक्ष्य था जितना हो सके हम सब सीखेंगे, और समय बहुत कम था हमारे पास। तो फिर हिंदुजा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, जितना हो सके क्रिटिकल केयर, सोनोग्राफी, 2D इको से लेके, वो 5 साल 6 मास हम बाहर रहे, उसमें सब कुछ सीखा। और फिर अब लगने लगा कि और थोड़ा पढ़ा जाए, थोड़ी सी माया आने लगी कि थोड़ा और अनुभव लिया जाए, और अनुभव लिया जाए। तो युद्ध रिट्रीट थी 2010 अक्टूबर मास में, हम उसमें आए कुमारों की भट्टी में, और वहां एक गीत बजा, वो गीत हमने सुना और फाइनल किया कि बस अब हम संसार में नहीं रह सकते, हम मधुबन में वापस आ रहे हैं। लौकिक गीत था, संसार का गीत था, हम सोच रहे थे विदेश जाए, यहां जाए, वहां जाए, और थोड़ी डिग्रियां ले फिर आए। पर वो जैसे ही हमने गीत सुना, उस कुमार भट्टी में कहीं बजा वो एक जगह, कौन सा गीत होगा? संदीप भाई के पास है वो गीत। वो एक ऐसा लौकिक गीत बजा कि हमने सोचा कि बस मधुबन भूमि हमें पुकार रही है, अब हम नहीं रुक सकते। 10 तारीख अक्टूबर मास 2010 हमने ग्लोबल हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तब से लेकर आज तक वही है। और आज पहली बार इस नागपुर भूमि में आ रहे हैं जहां से हम गए थे।
तुझे है पुकार।